हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 4। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराज हंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वा, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधु वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो श्रीचैतन्य प्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा, वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीतांबर दरुण बिंब फल धरुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रा, कृष्णात परम किमपि तत्व अहम् न जाने, व्रजेवसंतं नवनीतचोरं गोपांगनानां चदुकूलचोरं, श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरं, चूरायगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 4। जैसा कि हमने देखा कि प्रथम स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किए हैं और उन्होंने स्पेशली पूछा कि आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति के जीवन में उसका क्या कर्तव्य है और मरणासन व्यक्ति के लिए उसका क्या कर्तव्य है और उसे क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, उसके विषय में बताइए। अब उसके विषय में तो बताइए लेकिन साथ साथ भी विपर्य उसके विपरीत जो कुछ है जो एक व्यक्ति को नहीं श्रवण करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं कार्य करना चाहिए, वो भी बताइए, सब कुछ डिटेल से बताइए। तो शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते वक्त सबसे पहले वो बता रहे हैं कि जो कार्य हमें नहीं करने चाहिए। पहले विपर्यय का उत्तर दे रहे हैं 3 श्लोकों में, जिसमें से हम लोगों ने 2 श्लोक कल पढ़े, जिसमें श्लोक नंबर 2 में उन्होंने बताया श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्त्वम गृहेषु गृहमेधिना। जो गृहेषु हैं, गृहमेधी होते हैं, जो सदैव अपने घर और कुटुंब परिवार के भरण पोषण में ही अपने समस्त जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं, जो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानते, जो अपने विषय में नहीं जानते कि वे कौन हैं, जो आत्म साक्षात्कार नहीं करते, जो अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध के विषय में कुछ नहीं जानते, उनका तो केवल एक ही कार्य होता है इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके पास करोड़ों विषय हैं। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः, करोड़ों तरीके हैं उसके पास, सैकड़ों हजारों बातें सुनते हैं, देखते हैं और छूते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, वो समझते हैं यही जीवन का लक्ष्य है। सब कार्य करते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि अपश्य आत्मतत्वत्वम, क्योंकि उनको आत्मतत्व के विषय में पता ही नहीं होता है, अपनी रियलिटी के बारे में तो पता ही नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, व्यर्था कार्यकलाप में किस प्रकार अपनी आयु नष्ट करते हैं बताते हैं श्लोक नंबर 3 में। नित्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। रात्रि का समय, रात्रि का जीवन जो है वो सब व्यर्थ करते हैं, या तो सोते हैं या मैथुन करते हैं, स्त्री संग में या फिर सोने में अपनी रात खत्म कर देते हैं। दिवाचारते हया राजन, और दिन में गधों की तरह कार्य करते हैं। और कुटुम्ब भरणे वा, बस अपने कुटुम्बियों के, अपने परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में ही उनका पूरा जीवन समाप्त हो जाए। रात को तो सो जाते हैं, कुछ नहीं करते, बेकार इतना समय सोने में बिताते हैं, और दिन को परिवार का भरण पोषण करते हैं और सारा दिन कार्य करते हैं। इसी तरह से मनुष्य जीवन का सत्यानाश करते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा है कि उनको ये दिखता ही नहीं है कि संसार नश्वर है। नश्वरता, जीवन की नश्वरता उनको दिखती नहीं है, सब कुछ नश्वर है। मनुष्य देखता है अपने आप को भी, यदि मनुष्य देखे ना सिर्फ अपने आप को, तो हर दिन नाश होता है ना हमारा जीवन। वो हम कहाँ गए जो छोटे से थे, वो हम कहाँ गए जो जवान थे। आज अपना फेस यदि आईने में कोई देखे ना, तो उसे पता चल जाए कि किस तरह से मैं एक एक क्षण में नष्ट हो रहा हूँ। अपने बालों को देखकर पता होना चाहिए कि ये बाल तो काले होते थे, अब क्यों व्हाइट हो रहे हैं। अपने चेहरे को देखकर लगना चाहिए कि मैं कितना यंग दिखता था, अभी झुर्रियां क्यों आ रही है। हर एक हमारे और कुछ संसार में ना भी देखें, यदि अपने आप को भी देखें ना, तो भी हमें पता चले कि हम हर प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। हम सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है, लेकिन यदि शरीर हमारा होता तो हमारे आज्ञा के अनुसार ढलता ना। ये जवानी क्यों ढल जाती है, चेहरा क्यों बूढ़ा हो जाता है, बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम अधीन हैं। लेकिन जीव देखते हुए भी नहीं समझ सकता, इसके विषय में कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत् असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्पति वसत् स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्पति असत् आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम् पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रा, देह कहते हैं ये शरीर, अपत्य कहते हैं बच्चे, और कलत्र कहते हैं पत्नी को, आदिशु मतलब और दूसरे अन्य सारे संबंधी। ये सब जो भी इस शरीर से रिलेटेड वस्तुएं हैं वो क्या है, आत्मसैन्येषु, आत्मा यानी हमारी आत्मा की सेना, सिपाही है, सेना है। और वो क्या करती, असत्सु यानी पतनशील, वो हमारी आत्मा का पतन कराने के लिए। हम क्या सोचते हैं कि ये आत्मा जो है वो एक सेना लेकर आई है। क्या है उसकी सेना, शरीर है। सबसे बड़ा शरीर जो है वो हमारी सेना है। हम सोचते हैं ये हमारा साथ देगा और ज्यादा से ज्यादा आनंद करेंगे हम इसके द्वारा, है ना। जीव सबसे ज्यादा मोह यदि किसी से करता है तो वो अपने शरीर से करता है। वो कुछ भी दे सकता है परंतु अपने शरीर को कभी भी दुखी नहीं करना चाहता। इसका हमेशा एक इच्छा होती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा शरीर सुखी रहे, हर एक जीव की। इवन आज हम जिसके साथ संबंध रखते हैं ना, वो पहला हमारा क्या होता है, प्राइवेसी हम किसको देते हैं कि उसके द्वारा मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे शरीर को उसके द्वारा सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसी को हम महत्व देते हैं। तो यहाँ पर बताया देह, सबसे पहले देह, और अपत्य यानी बच्चे, कलत्र यानी पत्नी, ये सब हम चाहते हैं कि ये सब सेना की तरह हमें आनंद प्रदान करें। है ना। हम चाहते हैं बच्चों के द्वारा हमें आनंद प्राप्त होगा, पत्नी के द्वारा आनंद प्राप्त होगा, स्त्री के द्वारा आनंद प्राप्त होगा। और यहाँ बता आत्म सैन्यशु, इन ये सब सिपाही हैं, ये सब ज्यादा से ज्यादा भौतिक भोग मुझे कैसे करना है उसके लिए ये मेरी सहायता करेंगे। परंतु असत्सु अपि, असत्सु यानी पतनशील, ये सदैव हमारा पतन कराएंगे। क्योंकि जब तक जीव इनमें आसक्त रहेगा तब तक वो भगवान की ओर अपनी आसक्ति का निर्माण कर ही नहीं सकता। भगवान के प्रति आसक्ति तब भी संभव है जब देह, बच्चे, पति, पत्नी, घर, बाहर सबसे आसक्ति समाप्त हो जाए। याद रखिए कर्तव्य करने के लिए शास्त्र ने कभी मना नहीं किया। कर्तव्य एक अलग बात होती है और आसक्ति एक अलग बात होती है। जब इन वस्तुओं में जो कि शरीर और शरीर से रिलेटेड होती हैं, उनमें जब आसक्ति होती है तो क्या होता है, असत्सु, फिर पतन होता है जीव का। तो वो देख रहे हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तेषां प्रमत्तो निधनम्, जब देख रहे हैं कि उन सबों का प्रमत्तो यानी इतनी आसक्ति हो जाती है जीव की इन सब के साथ, भौतिक वस्तुओं के साथ, भौतिक व्यक्तियों के साथ, अपने शरीर के साथ इतनी आसक्ति होती है, प्रमत्तो वो अत्यधिक आसक्त हो जाता है। और साथ साथ में बहुत ही हैरत वाली बात बता रहे, आश्चर्य करते हुए कह रहे हैं निधनम, देख रहे हैं कि निधन हो रहा है ना? हर एक वस्तु जिसे हम प्रेम कर रहे हैं पल पल में वो हमसे छीन ली जाती है। परंतु पश्यन अपि न पश्यति, पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता। आज हम संसार में देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा है, तकरीबन सारे लोगों ने देखा है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। बहुत सारे लोगों को इस बात का अनुभव है कि उनके पिताजी की डेथ हो जाती है ना? लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों का बाप कभी नहीं मरेगा, ऐसा लगता है ना, क्योंकि उनको लगता है मेरे पिताजी की डेथ हो गई परंतु मेरे बच्चों का बाप कभी नहीं मरेगा, इसलिए मुझे सारी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश करने के विषय में सोचना है। कभी हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हमें पता चलता है कि कितने लोग गाड़ी में एक्सीडेंट करके मर गए, लेकिन हमें लगता है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, ये उनकी गाड़ी थी। कभी हम देखते हैं बॉम्ब ब्लास्ट में इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, लेकिन हमें लगता है नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उनके साथ ही हुआ है। इसको बोलते हैं पश्यन अपि न पश्यति, हम देख रहे हैं जीव प्रतिक्षण मृत्यु देख रहा है। हर एक यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा, यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से 100 प्रश्न पूछे थे, उसमें एक प्रश्न ये पूछा कि आश्चर्यम, मुझे ये बताइए कि संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम शेषा स्थावर गच्छन्ति किम आश्चर्यम परम शेषा स्थावर इच्छन्ति अहनि अहनि भूतानि, यानी हर टाइम पर हर एक घड़ी में हर एक पल में हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में और रोड्स पर हर एक क्षण में हमें मृत्यु दिखती है, दिखती है ना। अगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए भी हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो हमें पता चलता है इधर 5 मरे, उधर 10 मरे, उधर से 20 मरे। कभी कभी मैं पूछती हूँ, न्यूज़ चल रही होती घर पे, मैं पूछती हूँ कभी कोई खुशी की खबर नहीं मिलती यहाँ पर, हर वक्त मृत्यु की खबर क्यों मिलती है। तो युधिष्ठिर महाराज भी ये बोलते हैं अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम कि हर एक क्षण में लोग यम की पुरी में जा रहे हैं, यमराज के पास जा रहे हैं, क्योंकि यमदूत ही आएंगे उनको लेने के लिए। जो भगवत भक्ति नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, उनको लेने तो यमदूत आएंगे, तो यमालय यमलोक में जाते हैं। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो शेष रह गए हैं, जो मर गए सो तो चले गए यमराज के पास धाम में, लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो बच गए वो सोचते हम तो स्थावर हैं, हमारी मृत्यु नहीं आएगी,
किम आश्चर्यम परम, इससे बड़ा और क्या आश्चर्य हो रहा है। सब मर रहे हैं, तुम्हारा बाप मर गया, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम कैसे बचोगे? क्या तुमको कोई स्पेशल फौलाद से बना हुआ शरीर मिला है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा? हालांकि भगवान ने ये कह दिया, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जब तुम पैदा हुए थे उस दिन और कोई बात तुम्हारे नसीब में लिखी हो या ना लिखी हो, ये तो लिख दिया गया कि मृत्यु होगी तुम्हारी। लेकिन हर क्षण मृत्यु को देखते हुए भी जीव का हृदय इस बात में एग्री नहीं होता है कि कभी मेरी भी मृत्यु होगी। ये बताए कैसे है? जैसे बलि का बकरा, बलि के बकरे होते हैं ना, एक साथ अगर चार बकरे हों तो सबसे पहले एक की बारी आएगी, उसको बलि के लिए लेके आएंगे, सबसे पहले उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा डालेंगे, उसके बाद इसको तिलक लगाएंगे, सिंदूर का तिलक, और उसके बाद इसको हार पहनाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, और साथ में कुछ खाने के लिए देंगे, चना और ये घास इत्यादि। तो थोड़ी देर के लिए वो घास खाएगा, बहुत खुश होगा, वो सोचेगा मुझे तो कितना अच्छा वैभव मिल रहा है, कितना आनंद आ रहा है। उसको पता नहीं है कि एक क्षण के बाद ये मेरी गर्दन काट लेंगे। उसको पता नहीं है क्योंकि वो बेचारा बकरा है ना, उसने तो कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, उसको क्या खबर, उसके पास बुद्धि नहीं है। चलो ठीक है, उसको पता नहीं है, वो तो मजा कर रहा है खा पी कर, लेकिन उसके साथ में जो दूसरे तीन खड़े हैं ना, वो देखते हैं कि जिसको लाल कपड़ा पहना है, जिसको तिलक लगाया, जिसको हार पहना है, जिसको खाने के लिए दिया, और थोड़ी देर के बाद उसकी गर्दन काट दी गई। और बाद में जो तीन दूसरे हैं उनकी भी बारी आती है, उसके साथ भी वही किया जाता है, उसको भी कपड़ा पहनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, उसके गले में माला पहनाई जाती है, और खाने के लिए जब कुछ दिया जाता है वो भी मस्त रहता है, खाने में मजा करता है। उसको देखकर पश्यन अपि न पश्यति याम लिखा, यानी कि देखकर भी वो देख रहा है कि उसके साथ वैसा हुआ है, सेम टू सेम मेरे साथ हो रहा है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर भी वही होगा, अभी मेरी गर्दन कटेगी। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और फिर भी वो मजा कर रहा होता है। वो तो बकरे है ना, पशु है ना, एक के बाद एक की बारी आती है, वो कटते जाते हैं। उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई साधु संघ नहीं किया, उन्होंने कोई भगवद गीता नहीं पढ़ी, उन्होंने कोई साधु संघ नहीं किया। वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं, शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम परम, यहाँ संसार में मनुष्य रूपी बकरा, ये मनुष्य रूपी बलि का बकरा है, प्रतिक्षण देख रहा है सामने वाले की मृत्यु हो रही है और फिर भी सोचता है कि मृत्यु नहीं होगी। पता चलता है किसी को कैंसर हो जाता तो उसकी मृत्यु हो गई, पहले जाएंगे डॉक्टर के पास भाई कैंसर का इलाज बता, किसी के हार्ट के वॉल्व बंद हो जाते तो उसकी मृत्यु हो जाती है, बोला डॉक्टर कुछ करो मेरे हार्ट को है ना ट्रांसफर करो, कुछ और करो। किसी के लंग्स में ट्यूमर हो जाएगा, बोला मेरे लंग्स बदली करो, कुछ भी करो, मैं किसी भी कीमत पे मरना नहीं चाहता, मैं अपनी इस जीवन को रखना चाहता हूँ, क्या करोगे रख के, क्यों जीना क्यों है? कभी देखो शास्त्र खोल के, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीने के लिए नहीं जीना है कि अगर किसी की उम्र 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए तो क्या फायदा उसकी इतनी बड़ी लंबी जीवन का। जीवन में यदि कुछ किया ही नहीं तो वृक्ष जो है वो हजारों साल तक जीते कभी कभी, लेकिन क्या लाभ है इस जीवन का जिसमें भगवत भक्ति न हो। इसलिए कहा भगवत भक्ति हीनस्य, अगर भगवत भक्ति नहीं किए तो हम बोलेंगे भले भगवत भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े खानदान में पैदा हुए हैं, जाति शास्त्र जप तप, हम लोगों ने इतना बड़ा ज्ञान हासिल किया है, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ, इतनी सारी इन्वेंशंस की हैं, जाति इतना शास्त्र पढ़ा मैंने, इतना ज्ञान प्राप्त किया, बहुत ज्यादा धन एकत्रित किया, लेकिन ये सब क्या है पता है? भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्य इह देहस्य मंडनम लोकरंजनम, जिस प्रकार एक शरीर के अंदर आत्मा न हो, उसको भले कितना ही गहनों से सजाया जाए, कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाए, कुछ लाभ नहीं उसको, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। उसी प्रकार भगवान हमारी आत्मा है, यदि भगवान के साथ हमारा प्रेम नहीं है, यदि भगवान के साथ हमारा प्रेम का संबंध निर्माण नहीं हुआ है, यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर बाकी सारी भले हमारे अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, कितना ही ज्ञान हो, कितनी ही सुंदरता हो, कितना ही धन हो, वो सब उसी तरह है जैसे एक मृतक शरीर के ऊपर बहुत सारे वस्त्र और गहनों को लाद दिया गया हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, पश्यन अपि न पश्यति, ये मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, ये मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाया, जानबूझ के पश्यन अपि, पता है मरने वाले हैं, जानबूझ के विष खा रहे हैं। ये भौतिक जगत में चाहे कितना भी हम देहापत्य कलत्रादिशु, चाहे हम अपने शरीर से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, अपने धन से जितना भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब असत है, वो सब हमारे पतन का कारण है और वो सब विष है। कोई लोग बोले, अभी देखो शास्त्र हमें चीख चीख कर कहते हैं कि ये विष है, अभी देखो ये कोई व्यक्ति हो, उसके सामने विष वाला दूध रखा हो, देखने में विष लगता है, दूध लगता है, लेकिन असल में उसमें विष हो और उसमें लिखा भी हुआ है, वार्निंग लिखी हुई है कि भाई इसको पीना नहीं, इसके अंदर जहर है, वो फिर भी ये ना उठाता है। और साथ में जितने भी लोग खड़े हैं कि वो बोलते हैं देखो ये पॉइजन है, इसको पीना नहीं, लेकिन फिर भी वो पीता है, तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या हो सकता है। तो शास्त्र हमें चीख चीख कर बताते, गुरुजन हमें बार बार सावधान करते हैं, भगवान हमें कहते हैं कि भौतिक जगत की जो आसक्ति है वो ले डूबेगी, वो पतन करेगी, वो असत, वो हमारे इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देगी, लेकिन फिर भी हम कितने आसक्त हैं, इस भौतिक जगत की आसक्ति समाप्ति नहीं होती है। पश्यन अपि न पश्यति, जानबूझ के हम अनजान बनते हैं, पता है कल मर जाएंगे, पता है सब हमारा कोई साथ नहीं देगा, फिर भी संसार से प्रेम करते हैं, पता है कि हम जो कुछ भी कमाएंगे यहीं पर रह जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान के लिए समय नहीं निकालते और हम सिर्फ इस संसार में धन दौलत कमाने में ही मसरूफ होते हैं। अनुवाद देखिए, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश शून्य मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश यानी मृत्यु को नहीं देख सकते। फिर से देखिए, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति, ये वहीं पर जैसे पहले उन्होंने बता दिया ना कि अपश्यत आत्म तत्व, ऐसे व्यक्ति जो आत्म तत्व को नहीं जानते वो क्या करते हैं, विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, वो ये नहीं देखते कि क्यों मेरे जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं, क्यों बार बार मुझे जन्म लेना पड़ता है, क्यों बार बार दुखी होना पड़ता है, ये सब नहीं सोचते हैं। और शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। पता है ये सब भी स्वयं भी, अभी सैनिक क्या होते हैं, सैनिक का काम होता है आपकी रक्षा करना, वो आपकी रक्षा तभी कर सकता है जब उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में बल हो, लेकिन वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, बच्चे पत्नी ये सब शरीर वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर आप उससे क्या रक्षा की, सुरक्षा की उम्मीद करते हो। लेकिन यहाँ बताया कि विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी, अनुभव है, देखा है, बारंबार मृत्यु को देखते हैं, बारंबार देखते हैं संसार में कितने डाइवोर्स होते हैं, कितने बच्चे अपने माता पिता के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कितने पति पत्नियों में, इतना संसार में हमने अब अनुभव किया है, उसके बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश यानी मृत्यु को नहीं देखते, देखते नहीं है। पश्यन अपि न पश्यति, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह भौतिक जगत मृत्यु लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणु तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। ये भौतिक प्रकृति का एक ना बदलने वाला नियम है कि अवश्य आपको मृत्यु प्राप्त होगी। तो हम क्या करते हैं, युद्ध करते हैं कि तुम हमें मारना चाहती हो, हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे और मरेंगे नहीं, लेकिन संभव नहीं है, वो जीतेगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है। ये सिर्फ मानव योनि में ही हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकें। ये सिर्फ उसी इसी जन्म में ही, जैसे हमने अभी बात की, पशुओं को ये सब ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, परिजनों समाज देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जेय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। वो सोचता है कि ये सब मिलकर मेरी सहायता, मेरे सेनापति है ना, ये सब सहायता करेंगे और मैं मरने से बच जाऊंगा, भौतिक प्रकृति के इस नियम को बदल दूंगा। यद्यपि वे अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती द्विंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, वो जानता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कौन बचा है। चाहे संसार का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्यकश्यप, सबकी मृत्यु हो गई, आखिर तुम किस गिनती में हो जो तुम्हारी मृत्यु नहीं हो जाएगी। तो फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा काम है इन सब की पालना करना, ये सब मुझे एक दिन बचा देंगे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथा कथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। वो क्या बचाएंगे जो स्वयं मरने वाले हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही द्विंगत हो चुके हैं, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, तो एक दिन मेरी बारी भी आएगी, क्योंकि अब मैं पिता बन गया हूँ, कल दादा बनने वाला हूँ, अतएव उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। और इसी प्रकार इसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय पर मर जाएंगे, पहले पिता बनेंगे फिर दादा बनेंगे, मर जाएंगे, मृत्यु अवश्य आएगी। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्ण तरह सिद्ध करता है, फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे इस भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। सोचते हैं ये ऑपरेशन कर लेंगे तो बहुत ज्यादा समय जिएंगे, ऐसा हो जाएगा तो ज्यादा समय, भविष्य में मृत्यु अनंत काल तक नहीं आएगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चित ही भ्रामक पथ भ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है, अन्यथा जीव आत्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। ये प्रॉब्लम तभी क्रिएट हो गया जब जीव आत्मा ने इस भौतिक प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़कर इसी में आसक्ति जोड़ दी। जीव आत्मा को जन्म और मृत्यु से कोई सरोकारी नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है वो अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। आत्मा का तो कभी नाश नहीं होता, उसका तो कभी जन्म नहीं होता। ये प्रॉब्लम है सिर्फ कि भौतिक प्रकृति के अंदर वो इस तरह से लिप्त हो गई है कि अपने आप को शरीर मान बैठी है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्यथा जीव आत्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों से के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष शरीर स्वर शरीर पत्नी बच्चे समाज देश इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर उदाहरण लेते हैं कि भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है। ये भौतिक प्रकृति एक बहुत बड़े महासागर की तरह है और एक सागर के अंदर छोटे छोटे बुलबुले तो आते रहते हैं जब लहरें चलती हैं तो। और इस संसार में आपके पास जो कुछ भी है, अपना शरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि, ये सब छोटे छोटे बुलबुलों की तरह है। आत्मा के ज्ञान यानी आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शरीर, मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं जो इस भौतिक जगत में असंभव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे सिर्फ किस तरह से मैं इन बुलबुलों को फूटने से बचाऊं, किस तरह से अपने शरीर, अपने बच्चों, अपने पत्नियों को ऐसा एक चिरकाल तक जीवन दूं, इस आसक्ति में मानव शक्ति बर्बाद हो रही है। बस यही सोच रहे हैं किस तरह से जीवन को इस भौतिक जगत में मैं कैसे सुखी रहूं, मैं अपने संबंधियों को कैसे सुखी रखूं, ये संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में ना सुखी रहना संभव है और ना ही शाश्वत जीवन संभव है। ये संभव नहीं है लेकिन फिर भी जीव बोलता है कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। पश्यन अपि न पश्यो, तुम कैसे कर सकोगे, तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुमसे बड़े आए चले गए, तुम्हारी क्या औकात है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे ना केवल विनाशशील हैं अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं, अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित है ना। अकेले होता है व्यक्ति, उसे डर लगता है एक दिन कभी ऐसा हो घर के सारे लोग कहीं पर चले जाएं, रात को आप घर में सो रहे हो तो आपको डर लग रहा होगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, है ना। बार बार चेक करोगे दरवाजा बंद है या खुला है, घर में कोई नहीं है, मेरा पापा भी नहीं है, मेरे पति नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, अकेले में मुझे बहुत डर लगता है ना। हम सोचते हैं कि जब ये सब साथ होंगे तब हमें बचा लेंगे, परंतु वो सब अक्षम है, वो सब विनाशशील है और ना केवल विनाशशील है उसके साथ साथ मोहग्रस्त है। वो भी नहीं जानते कि उनका भी कल नाश हो जाएगा और उन्हें ये भी नहीं पता कि किस तरह से इस मोह को समाप्त करना है। वो हमें नहीं बचा सकते, फिर भी हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं जब तक मैं इनसे घिरा हुआ हूँ। मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे परिवार वाले, संबंधी, देशवासी बचा लेंगे मुझे, परंतु ऐसा नहीं होगा। एक दिन मृत्यु के क्रूर हाथों में हम सब भी अपनी जान दे देंगे जिस प्रकार हमसे बड़ों ने दी। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। शव की सजावट यानी जो कुछ भी आज इस भौतिक जगत में विकास हो रहा है ना, जैसे हम बोल रहे थे कि अप्राणस्य यह देहस्य मंडनम लोकरंजनम, ऐसा इस भौतिक जगत में भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जप तप, जो कुछ भी विकास हो रहा है, चाहे कितनी ही इन्वेंशन हो रही है, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी ही विकास कर रही है, लेकिन वो सजावट क्या है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। अपश्यत आत्म तत्व आत्म तत्व जो अपने आप को नहीं जानते हैं, जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रष्ट हैं। वो ही सोचते हैं कि ये शरीर बचा रहेगा, ये शरीर के द्वारा आनंद प्राप्त करना है। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं उन्हें इन भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है, कोई भी उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है, उनका आकर्षण केवल भगवान के प्रति होता है। इसी श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत भक्त जो हैं और उन जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। वो जानते हैं कि ये भौतिक जगत में हम आए हैं और अधिक से अधिक भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, भगवान के साथ अपने टूटे हुए संबंध को निर्माण करेंगे और भगवत धाम जाना है, उसी के लिए कार्य करते हैं। वो इस तरह से रात्रि सोने में और दिन खाने पीने में और कुटुंब भरण करने के लिए या गधों की तरह कार्य करने में नहीं बिताते हैं। वो जानते हैं कि मुझे किस तरह से अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है और इसका एक ही तरीका है, अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना है, गुरु और आचार्यों के आदेशों अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भौतिक जगत से अपनी आसक्ति, अपने शरीर, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने देश से हटाकर भगवान के चरणों में अपनी संपूर्ण आसक्ति को निर्माण करना है। इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से मनुष्य जीवन सफल होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। अब यहाँ तक तो विपरीत बताया कि क्या नहीं देखना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब कल से सुखदेव गोस्वामी वास्तविक प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक का है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को सदैव अच्छे से कर सकूं।